लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मानव विकास के लिए प्रतिबद्ध स्वयंसेवी और गैर लाभकारी संगठनों को सबकी भलाई के लिए समर्पित लोग मिलें तथा वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लगातार नए रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं माता मरियम के निष्कलंक गर्भधारण महापर्व के अवसर पर संत पापा का देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने माता मरियम के निष्कलंक गर्भधारण महापर्व के शुभ अवसर पर विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। उन्होंने संत पेत्रुस के प्रांगण में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
मेरी फ्रातेली ए सोरेले, बुनजोर्नो ए बोना फेस्टा। इल वांजेलो देला सोलेनिता ओडियर्ना ci introduce nella casa di Maria per raccontarci l'annunciazione.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और पर्व की शुभकामनाएं। मरियम के निष्कलंक गर्भधारण के त्योहार हेतु लिया गया सुसमाचार हमें उन्हें उनके घर में शुभ संदेश सुनाए जाने की बात प्रस्तुत करता है। स्वर्गदूत गैब्रियल कुमारी को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। संत पापा ने कहा कि वे उन्हें नाम लेकर नहीं पुकारते हैं, बल्कि उन्हें एक नए नाम से संबोधित करते हैं, कृपा से पूर्ण। कृपा से पूर्ण और इसीलिए पापों से मुक्त, यह नाम उन्हें ईश्वर की ओर से दिया जाता है, जिसका त्योहार आज हम सभी मनाते हैं। संत पापा ने कहा कि हम मरियम के आश्चर्य के बारे में विचार करें। ऐसा करने के द्वारा ही वह अपनी सच्ची पहचान को जान पाती हैं।
Infatti, chiamandola con quel nome, Dio le rivela il suo segreto più grande.
वास्तव में उस नाम से पुकारते हुए ईश्वर उनके लिए एक वृहद रहस्य को प्रकट करते हैं, जिसके बारे में वह पहले अनभिज्ञ थीं। हम सबों के साथ भी ऐसा ही होता है। किस अर्थ में? इस अर्थ में कि पापियों के रूप में हम सबों ने भी ईश्वरीय उपहार को प्राप्त किया है, जो हमें जीवन से भर देता है। हम बहुत बार अपने को आदि पाप से ग्रसित होने की बात कहते हैं, लेकिन हमें एक वास्तविक कृपा भी मिली है, जिसके बारे में हम यद्यपि अपने को सचेत नहीं पाते हैं। संत पापा ने कहा कि यह वास्तविक कृपा हमारे लिए क्या है? इसे हमने अपने बपतिस्मा के दिन प्राप्त किया है, जिसे हमें याद करते हुए त्योहार के रूप में मनाने की जरूरत है। उन्होंने अपने इस सवाल को पुनः सबों के सामने रखते हुए कहा, हममें से कितने हैं जो अपने बपतिस्मा की तारीख को याद करते हैं? वह तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि वह तारीख हमें पता नहीं तो हम घर जाकर उसका पता लगाएं। वह तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने नाना नानी से उसके बारे में पूछें, क्योंकि वह दिन हमारे लिए कृपा का एक बड़ा दिन है। उस दिन हमने एक नए जीवन की शुरुआत की है। उस दिन ईश्वर हमारे जीवन में आए, जिसके फलस्वरूप हम हमेशा के लिए ईश्वर के संतान बन गए, जो हमें प्रेम करते हैं। यह हमारे लिए वह वास्तविक सुंदरता है, जिसके लिए हमें आनंदित होने की जरूरत है। आज मरियम जो कृपा के कारण अपने में अचंभित होती हैं, वह उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही सुंदर बनाता है, जो हमें भी हमारी सुंदरता पर विस्मित होने में मदद करता है। हम इसे एक चिन्ह के द्वारा समझ सकते हैं, जिसे हम श्वेत वस्त्र के रूप में बपतिस्मा में पाते हैं, जो हमें इस बात की याद दिलाती है कि बुराई के कलंक से, जिसके नीचे हम सालों दबे रहें, हमारे अंदर उस बुराई से बड़ी एक अच्छाई व्याप्त है। हम उसे अपने में गुंजित होते सुने, जहाँ ईश्वर हमें कहते हैं,
फिलिया ती आमो ए सोनो कॉन ते सेम्प्रे, तू से इम्पोर्टांते पर मे, ला तुआ वीता ए प्रेसियोसा।
पुत्र पुत्री, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा जीवन कीमती है। संत पापा ने कहा कि जब चीजें ठीक नहीं होती और जब हम अपने में निराश हो जाते, जब हम अपनी हताशी में अपने को बेकार या गलत होने का अनुभव करते हैं, तो उन परिस्थितियों में हमें इस वास्तविक कृपा के बारे में सोचने की जरूरत है। संत पापा ने कहा, आज इस वचन हमें और एक महत्वपूर्ण बात को बतलाता है कि अपनी सुंदरता को बनाए रखने हेतु हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है। वास्तव में सुसमाचार हमें मरियम के साहस को दिखलाता है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ईश्वर को हाँ कहा। उन्होंने ईश्वर के जोखिम को चुना, जिसकी चर्चा आज का पहला पाठ हमारे लिए आदि पाप के रूप में व्यक्त करता है, जहाँ हम परीक्षा और परीक्षक को पाते हैं। हम इसे अपने अनुभव के अनुसार जानते हैं। हमारे लिए अच्छाई का चुनाव करना मुश्किल होता है, जहाँ हम अपने में व्याप्त अच्छाई का आनंद उठाते हैं। हम इस बात पर विचार करें कि कितनी बार हमने उसे बुराई के संपर्क में आते हुए नष्ट कर दिया। अपनी इच्छाओं के प्रति चतुराई में या उन चीजों को करने में जो हमारे हृदय को दूषित करता है, या अपने समय को उन चीजों को करते हुए बर्बाद किया जो हमें हानि पहुंचाते हैं, जहां हमने प्रार्थना को अपने से दूर रखते हुए उन लोगों की सेवा करने में आनाकानी की जिन्हें हमारी मदद की जरूरत थी, जिन्हें हम अपनी सहायता दे सकते थे। इन सारी चीजों के सामने आज हम अपने लिए एक अच्छे संदेश को पाते हैं। संत पापा ने कहा,
मरिया लूनिका क्रियातुरा उमाना सेंसा पेकातो नेला स्टोरिया एक कॉन नोई नेला लोता।
मरियम जो एकमात्र पाप रहित मानव रही, हमारे संघर्ष में हमारे साथ रहती हैं। वे हमारी बहन की भांति हैं, और उससे भी बढ़कर वे हमारी माता हैं। हम जो अपने लिए अच्छाई को चुनने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, हम उनमें निर्भर रहें। हम अपने को उन्हें सौंप देते हुए कहें, हमें अपने हाथों से पकड़े रहिए, माँ मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आपके सानिध्य में बुराइयों से लड़ने हेतु मुझे अधिक शक्ति मिलेगी, आपके संग रहने में मैं अपनी वास्तविक सुंदरता को खोज पाऊंगा। हम आज अपने को मरियम के हाथों में समर्पित करें। हम यह रोज यह कहते हुए करें,
ripetendole Maria ti affido la mia vita, ti affido la mia famiglia, il mio lavoro, ti affido il mio cuore e le mie lotte।
मरियम, मैं अपने को, अपने परिवार को, अपने कार्य, हृदय और संघर्षों को आपको अर्पित करता हूँ। मैं स्वयं को आपके लिए समर्पित करता हूँ। निष्कलंक मरियम हमें अपने पापों से मुक्त रहने, अपनी सुंदरता को बनाए रखने में मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सबों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Refecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने रोम और विभिन्न स्थानों से आए हुए तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
Oggi pomeriggio mi recherò a Santa Maria Maggiore a pregare la salus populi romano.
आज दोपहर में मैं संत मरिया मजोरे महागिरजा घर की तीर्थ करते हुए मरियम की प्रतिमा सालुस पोपोली रोमानी के समक्ष प्रार्थना करने जाऊंगा। उसके उपरांत परंपरा के अनुरूप मैं स्पानी प्रांगण में माता मरियम निष्कलंक गर्भधारण के चरणों में पुष्प अर्पित करूंगा। आप इन क्षणों में मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, जहां हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर यूक्रेन के लिए जो अपने में दुखों से ग्रसित है। उन्होंने माता मरियम को स्वर्गदूत के द्वारा कहे गए वचनों को याद करते हुए कहा कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनकी सहायता से शांति स्थापित की जा सकती है। लेकिन ईश्वर हमसे नेक इच्छा की चाह रखते हैं। मरियम हमें उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने में मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सबों को पुनः निष्कलंक गर्भधारण पर्व और आगमन काल की शुभकामनाएं प्रदान की और अपने लिए प्रार्थना का निवेदन करते हुए सबों से विदा ली।
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल परिषद के 6 सदस्यों से मुलाकात करते हुए आवधिक परामर्श पूरी की। यह मुलाकात वैटिकन के संत मार्था निवासालय में 5 से 6 दिसंबर को संपन्न हुई। कार्डिनल परिषद के सदस्यों से मुलाकात में विभिन्न मुद्दों पर विचार मंथन किए गए, जिसमें मुख्यतः सन 2023-24 में सिनोडालिटी पर होने वाली सिनोड प्रक्रिया, नाबालिकों की सुरक्षा और शर्म अल शेख में पूरी हुई COP 27 के परिणामों पर चर्चा की गई। संत पापा फ्रांसिस ने इन 2 दिनों की संगोष्ठी की अगुवाई की। वैटिकन प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 5 दिसंबर को कार्डिनलों ने संत पेत्रुस के महागिरजाघर में दिवंगत कार्डिनल रिचर्ड कुया अब्रोब की स्मृति में मिस्सा बलिदान अर्पित किया, जिनकी मृत्यु 27 नवंबर को हो गई थी। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार ये आमदर्शन समारोह के पूर्व इटली के सिने अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर रोबेर्तो बेनिनी से मुलाकात की। विदित हो कि रोबेर्तो बेनिनी ने सन 1997 में फिल्म द लाइफ इज ब्यूटीफुल के लिए ऑस्कर का खिताब जीता था। इसके एक साल उपरांत उन्हें इस फिल्म को संत पापा योहान पॉल द्वितीय के लिए प्रदर्शित करने हेतु वैटिकन में निमंत्रण दिया गया था। उधर पैक्स क्रिस्टी सम्मेलन के समापन मिस्सा में कार्डिनल चर्नी ने नबी इसाईस के ग्रंथ से ईश वचन ईश्वर कभी नहीं थकते या निराश होते हैं को उद्धृत करते हुए शांति और विश्वास पर अपने प्रवचन दिए। कार्डिनल ने अपने प्रवचन में कहा कि बहुत से सवाल और चिंताएं लोगों के हृदय में उठ रहे हैं। ख्रिस्तियों के रूप में हम प्रेरितों से भिन्न नहीं हैं, जो पास्का संध्या बेला में अंतिम व्यारी की कोठरी में बंद थे, जो अपने में पराजित लगते थे। शांति जो हमारे लिए यीशु की सांसों से आती है हमें नवीनता प्रदान करती है। हमें इन उपहारों की जरूरत है जिससे हम अपने समय की कठिनाइयों का सामना कर सकें। कार्डिनल चर्नी ने विश्वास खोने के बारे में कहा जिसे ख्रिस्तीय अपने जीवन में अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा, हम जो कुछ भी करते हैं और जिन बातों पर जोर देते हैं वह ईश्वर की प्रेमपूर्ण कोमलता और मुक्ति की निगाहों को व्यक्त करती है। अपने अधिकारों से वंचित लोगों के लिए जो शांति और न्याय से अपने को अलग पाते हैं, ईश्वर आपके बारे में जानते हैं। वे आपके लिए काम करते हैं, वे आपके लिए लड़ते हैं, वे आपके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि आगमन के इस काल में आप अपनी निगाहें उठाएं और ऊपर की ओर देखें। उन्होंने कहा कि ईश्वर छोटी चीजों से शुरू करते हुए दुनिया में परिवर्तन लाते हैं। उनके कार्य करने का तरीका अलग है। वे हमें निमंत्रण देते हैं कि हम छोटी चीजों को ध्यान दें, हम उन पर ध्यान दें। वे हमारे लिए सुसमाचार के संदेश को लाते हैं। लवीव के मेयर एंड्रे सादोवी ने वैटिकन समाचार को दिए गए अपने साक्षात्कार में देश की स्थिति और राहत कार्यों का जिक्र करते हुए भविष्य में अच्छे दिनों की आशा व्यक्त की। बुधवार को वैटिकन समाचार से वार्ता करते हुए लवीव के मेयर सादोवी ने कहा कि युद्ध के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक करीबन 5 मिलियन लोग उनके शहर से पार हुए हैं, जिनमें करीब 11,000 लोग घायल अवस्था में पाए गए। युद्ध में शिकार लोगों की गंभीर स्थिति के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमारे अस्पताल मुख्यतः घायल लोगों से भरे हैं। हमें सर्जरी, अस्थायी प्रोस्थेटिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक पुनरावासन की जरूरत है। उन्होंने इस बात की याद दिलाते हुए कहा कि 21 साल पहले हमने संत पापा योहान पॉल द्वितीय का स्वागत किया था, लेकिन आज लवीव के 6,000 शिविरों में असंख्य जरूरतमंदों को देखा जा सकता है। देश की कठिन परिस्थिति में भी मेयर सादोवी अपनी उम्मीद में कायम है। उन्होंने कहा, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मुझे अपने नागरिकों पर विश्वास है। मैं यूक्रेनी सेना में विश्वास करता हूँ। हमारी जीत होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि देश का भविष्य अच्छा होगा। नवंबर में लवीव शहर द्वारा यूरोपियन यूथ कैपिटल 2025 का खिताब जीतने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए आशा का एक संदेश है। यह हमारे शहर के लिए बहुत विशेष क्षण है। मेयर सादोवी ने अपने चेहरे पर गर्व भरे मुस्कान के साथ इस बात की पुष्टि की कि लवीव यूक्रेन की सांस्कृतिक राजधानी है। कीव यूक्रेन का दिल है, लेकिन लवीव यूक्रेन का नमक है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।